Hey everyone, and welcome to Lost and Found, the podcast where we dive into stories of struggle, growth, and self-discovery. I'm your host, Himanshi, and in each episode, we explore what it means to truly find yourself through life's unexpected turns. Today, I'm joined by Dr. Alok Singh, former international kabaddi player, coach, and an incredible storyteller. From muddy fields to global arenas, his journey is packed with grit, resilience, and a lot of humor. We'll talk about the mental battles behind the sport and the mindset it takes to make a comeback. Let's get into it. Let us start with today's episode. What was your first memory of playing kabaddi? Because we have known you as a kabaddi player. So, agar main bolun ki aap ek baar mujhe agar yaad karke bataein, to ye zehen mein khayal kaise aaya ki kabaddi khelna hai? Aur koi aisi memory jisse you can relate it ki nahi, jab main kabaddi ka sochta hu to ek ye memory mere dimag mein hamesha rehti hai ki ha, main itne saal ka tha tab se maine khelna isko shuru kiya, ya koi aisa fond memory aapki?
मेरी फर्स्ट मेमोरी तो मेरे फादर ही हैं, क्योंकि मैं उनको देख के ही बड़ा हुआ हूँ. जब मैं बहुत छोटा था तो वो खेलते थे, तो मैंने उनको खेलते हुए देखा है. और वो ऐसे प्लेयर थे जिनने यूपी पुलिस को, उस समय यूपी पुलिस जो होती थी पूरे इंडिया में बेस्ट होती थी, तो वो ऐसे प्लेयर थे कि उनने यूपी पुलिस को 3 रेड में ही लोना मार दिया था. लोना ऐसा होता है पूरी टीम को एक बार ऑल आउट करना. तो वही मेरी फर्स्ट मेमोरी थी और मुझे था कि मुझे उनकी तरह बनना है.
तो हमेशा से ही कबड्डी प्लेयर बनना चाहते थे जैसे अभी आपने बोला, या फिर इट वॉज बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ फादर, या लाइफ टर्न आउट लाइक दैट? और क्योंकि हम बोलते हैं ना कि अगर लड़का होता है तो इट इज जनरली सेड कि इंजीनियर, डॉक्टर और ये सारी फील्ड के अंदर हम डालेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था फैमिली का प्रेशर कि नहीं कबड्डी नहीं, ये सारी चीजें करें तो ज्यादा तरक्की मिलेगी?
ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि गांव में बेसिकली देखोगे तो ज्यादातर कबड्डी, खो खो यही सब होता है और उसी को देख के मैं बड़ा भी हुआ हूँ. तो अब मैंने शुरू से ही देखा है उसी चीज को, तो मैंने उसी में प्रोसीड किया. और शायद मैं, मुझे धीरे धीरे खेलते मुझे लगा कि मैं इसमें ही अच्छा हूँ, तो फिर मैंने उसको छोड़ा नहीं और उसी में आगे बढ़ता गया.
भी ऐसा हुआ कि कबड्डी खेलते हुए आपको लगा कि नहीं यार, कबड्डी के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि हम कितनी, ये तो अभी हम देखते हैं कि प्रो कबड्डी लीग है और ये कबड्डी से रिलेटेड टूर्नामेंट्स अभी, सिंस द मीडिया इज सो यू नो इनटू अदर गेम्स आल्सो, तो अभी लोगों को पता लग रहा है बाकी के गेम्स और बाकी के स्पोर्ट्स के बारे में. बट शुरुआत से अगर हम देखें तो we were more inclined towards plays like cricket ka ho gaya jaise, right? So kabhi aapko aise nahi laga that I need to switch my game, I need to just switch it from kabaddi to cricket ya baaki kisi aur mein mujhe jaane ki zarurat hai, kyunki bahut struggle hai kabaddi ke andar?
Kabhi aisa to nahi laga ki switch my game, but ye laga kabhi kabhi ki ha bas bahut ho gaya. जैसे आपने बताया पॉलिटिक्स हर जगह होती है, तो हर खिलाड़ी जो भी ऊपर तक गया है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का शिकार तो होता ही है. तो कभी कभी बीच में आया मन में कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, बस ये आया, लेकिन दूसरे गेम का ख्याल तो नहीं आया मेरे मन.
तो जब आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि नहीं अभी बहुत हो गया है, अभी आई नीड टू क्विट, बेशक से मैं दूसरे गेम के अंदर ना जाऊं, तो व्हाट वाज दैट थिंग व्हिच कीप यू मोटिवेटेड कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, I have to go ahead with this only. तो एक क्या push factor क्या रहा है आपकी life के अंदर, जब भी ऐसे moments आए कि जो आपको hold back करते हैं हमेशा?
शुरू शुरू में जब मैं खेलता था तो वो तो सिर्फ मैं अपने motivation के लिए खेलता था. मैं इसलिए नहीं खेलता था कि मैं इंडिया खेल लूं या फिर मैं कुछ अचीव कर लूं, क्योंकि वो मेरे जहन में था ही नहीं. मुझे मजा आता था इसलिए मैं खेलता था, और ऐसे ही कर करके मैं बहुत आगे निकल गया था. और जब ये सब चीजें मेरे साथ आने लगी कि मतलब कभी पार्शियलिटी होने लगी, ऐसा होने लगा, तो मुझे लगता था, लेकिन मैं इतना दूर आ गया था उसके साथ कि अब मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता था. तो यही चीज मुझे मोटिवेट करती थी हमेशा उससे जुड़े रहने के लिए. मैं सोचता था कि चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, मैं खेल तो रहा हूँ, मैं अपना टाइम तो अच्छी जगह वेस्ट कर रहा हूँ, वेस्ट नहीं बोलना चाहिए, यूज कर रहा हूँ.
तो इज इट लाइक कि वो जो एक हम बोलते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता मत कर, वाज इट दिस काइंड ऑफ थिंग इनटू योर हेड?
कुछ मोटिवेशन नहीं था कि कुछ मुझे चाहिए इसके लिए. आप मान सकते हो गीता का अगर आपको उदाहरण लेना है तो इसको मान सकते हो, कि कुछ ऐसा नहीं था कि चाहिए था, वही मुझे पसंद था बस.
दैट वॉज अ डेडिकेटेड एफर्ट यू वर पेइंग बिकॉज एक सर्टेन लाइकिंग थी उस स्पॉट के लिए आपकी, क्योंकि शुरुआत से यू वर सीइंग दैट इनटू योर फैमिली, राइट?
यस.
तो जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जब हम गेम्स की बात करते हैं, जैसे आपने बताया एक्सटर्नल प्रेशर पॉइंट्स तो रहते ही रहते हैं, बट इंटरनल भी प्रेशर रहते होंगे कि ये अब ये टूर्नामेंट आ गया है, अभी ये जीतना है. टीम का प्रेशर होता होगा, कोचेस का प्रेशर होता होगा. सो हाउ डू यू रियली डील विद ऑल दीज मेंटल प्रेशर्स व्हेन देयर आर टाइम्स ऑफ स्ट्रेस अराउंड?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रेशर पे ही खिलाड़ी का सब कुछ डिपेंड होता है कि कैसे वो परफॉर्म करेगा. अगर उस प्रेशर को हैंडल कर लेता है वो तो अच्छा परफॉर्म करेगा, नहीं हैंडल कर पाता है तो उसकी परफॉर्मेंस नीचे जाती है. सिर्फ मैं अपने माइंड को शांत कर लेता हूँ और मैं सोचता हूँ बिगिनिंग से कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था, ये टूर्नामेंट ही जीतने के लिए स्टार्ट किया था या अच्छा खेलने के लिए स्टार्ट किया था. और उसके बाद फिर मैं खेलता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन वहां से देख रहा है, कौन कोच है, कौन प्लेयर है. उस समय जो मेरे मन में आता था बेस्ट वही मैं करता था और उसी ने मुझे अचीवमेंट दी जहां तक मैं आया.
तो इससे कैन वी ड्रॉप दिस मैसेज आल्सो टू द ऑडियंस कि व्हेनेवर यू आर इनटू एनी डिफिकल्ट सिचुएशन इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप वो एक हैप्पी मोमेंट या व्हाई यू वांटेड टू गो अहेड विद दिस वाला मोमेंट अगर आप रिकॉल करें तो इट विल बी ऑल हैप्पीनेस अराउंड इनटू योर हेड एंड यू वुड बी एट काम एंड एट ईज और आप चीजों को आसानी से कर पाएंगे रादर देन टेकिंग दैट प्रेशर अराउंड व्हाट यू आर सेइंग एट द मोमेंट मे हेल्प, राइट?
यस, इट में हेल्प, इट में डेफिनेटली हेल्प. अगर किसी चीज को आप कर रहे हो और उसके आउटकम के लिए आपने सोच लिया तो डेफिनेटली आपके आपके ऊपर प्रेशर आएगा. अगर आउटकम ही नहीं है उसका, जीते हारे कुछ से फर्क ही नहीं पड़ता है, तो आप अपना बेस्ट दे सकते हो. तो आउटकम ही सच अ मेन प्रॉब्लम.
अगर मैं इसको एक लाइन में समझने की कोशिश करूं जो आप कहना चाह रहे हैं, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज इट कि इट इज ऑलवेज बेटर टू फोकस ऑन टू द प्रोसेस रादर देन द एंड रिजल्ट. बिकॉज अगर आप प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो दैट विल ऑलवेज लीड टू अ गुड एंड सेटिस्फाइंग रिजल्ट रादर देन कि सक्सेस मिला या फेलियर मिला, बट एट द एंड यू विल बी यू नो सेटिस्फाइड विद इन अगर आप प्रोसेस पे हर स्टेप पे आप फोकस्ड रहते हैं तो.
yes. This आपने एक समराइज किया, बहुत अच्छे से समराइज किया. इसमें मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहता हूँ कि आप आउटकम के लिए मत खेलो, वो तो चलता है, लेकिन इसके लिए भी मत खेलो कि किसी दूसरे को खुश करना है या कुछ भी इसके लिए मत करो कि दूसरों को कुछ मिल जाए या दूसरे आपको क्या बोलेंगे. सिर्फ इसके लिए करो कि तुम करना चाहते हो और तुमको 100% सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो करने से.
Well said. So how was your journey from mud to mat? Because आपने बोला कि you belong to a village, right? और क्योंकि गांव के अंदर कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, रेसलिंग हो गया, ये सारी चीजें शुरुआत से ही हमने देखा है, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो यूपी हो, बहुत ज्यादा प्रचलन के अंदर रही है ये सारी चीजें. तो कैसी आपकी जर्नी थी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग फ्रॉम योर विलेज एंड गोइंग टू द नेशनल लेवल एंड कोलैबोरेटिंग विद वेरियस इंटरनेशनल टीम्स, आपको आपने कोचिंग भी दी है एंड यू हैव सीन दैट ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल गेम टू दैट ऑफ अ फॉर्मल गेम. सो हाउ इज दैट ट्रांजिशन एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एंड द चैलेंजेस यू फेस जब आप ये ट्रांजिशन के अंदर उस फेज के अंदर थे?
एक्चुअली कबड्डी जो है वो सेम था, हर जगह सेम ही था. जैसे कि आप सोचो कि शहर में दूसरा था या फिर गांव में अलग था, नहीं. जब मैं खेलता था तो मेरे समय तो हर जगह सेम था. पहले मठ पे ही खेला जाता था. तो उसके बाद जब ये प्रो कबड्डी आया, प्रो कबड्डी से 2 साल पहले ही मैट आई. जो मेरे कोच हैं राव सर, फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, तो उन्हीं का एक ये स्टेप था कि इसको इंडोर बनाना चाहिए और इंडोर बनाने के लिए उस पर मैट लाना चाहिए. तो उन्हीं के स्टेप के कारण आज आप प्रो कबड्डी भी देख रहे हो और हम मठ से मैट पे भी आए. इसके लिए मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी लिया था BHU में विथ राव सर. तो उसमें भी यही हमने बात की थी कि कैसे कबड्डी डेवलप हुई. तो कबड्डी का डेवलपमेंट सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि प्रो कबड्डी आया. इससे पहले वो सिर्फ मठ पे ही खेला जाता था और हर जगह मठ से ही खेला जाता था. उसके बाद प्रो कबड्डी आने के बाद ज्यादा पॉपुलरिटी मिलने लगी, ज्यादा लोग उसको देखने लगे और ये गांव-गांव में, घर घर में, आज किसी बच्चे से आप पूछो तो जैसे वो क्रिकेट के रूल्स बताता है कि ये आउट हो गया है, ये एलपीडब्ल्यू है, वैसे ही कबड्डी के भी रूल्स बताता है। ये सिर्फ हुआ है लोगों के जानने से और ये प्रो कबड्डी की वजह से।
चैलेंजेस रहे होंगे जब वो ट्रांजिशन फेज था कि मतलब शुरुआत से हम इक्विप्ड थे उस मड के अंदर खेलने के लिए, बट ऑल ऑफ अ सडन जब मैट के अंदर ट्रांजिशन हुआ, तो क्या कोई फिजिकल चैलेंजेस या कोई ऐसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े कि थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है उस पे खुद को बिल्डअप करना उस मैट पे, क्योंकि अब बॉडी कस्टमाइज हो गई थी आपके मड के हिसाब से, तो वर देर एनी सच चैलेंजेस?
यस, जब हम मैट आई तो मैट सबसे पहले कोई भी चीज हम बहुत समय तक करते हैं, उसके बाद जब ट्रांजिशन आता है तो सबसे पहले हमारी बॉडी रजिस्ट करती है कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो हमने भी रजिस्ट किया, हमने भी बोला कि ये ठीक नहीं है, और उस पे देखा तो इंजरी भी ज्यादा थी, क्योंकि मट के अंदर तो हम स्लाइड कर जाते थे, मट के अंदर हमारे मूवमेंट जो ग्रेविटी जो थी रहती थी वो हमको स्टेबल बना के रखती थी। जैसे ही मैट आया तो लिगामेंट इंजरीज ज्यादा होने लगी, बिकॉज एक तो फ्रिक्शन मैट का था, मैट भी आप देखोगे तो उसपे धारियां होती है, और एक जूता था जो हम पहनते हैं कबड्डी के लिए स्पेसिफिक, तो उसपे भी फ्रिक्शन था। जब दोनों फ्रिक्शन मिले तो बहुत सारे इंजरी हुई, बट मैं अभी देख रहा हूँ कि बच्चे अडॉप्ट कर गए हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और जब मड में जो स्किल नहीं हो पाती थी वो मैट पे हो रही है। तो इज अ पार्ट ऑफ द टाइम, मैं यही बोलना चाहूंगा, और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, इतनी पॉपुलरिटी मिली मैट की वजह से ही। अब मैट पे कोई खेल रहा होता रोज छिल के आता तो किसी के माँ बाप उसको भेजते नहीं। जब हम खेलते थे तो मेरी माँ तो रोती थी घर पे आता था तो मैं, कि इधर छिल गया है, इधर इंजरी हो गई है, घुटने में इंजरी हो गई है, तो वो हल्दी चूना लगाती थी और रोती थी बस। आज नहीं होता ये सब चीज।
So is it that ki jo ye transition raha hai mud to mat ka, that mat has saved lot of your ligaments aur ye jo jo injuries aapko mud ke through hoti thi, but there are certain pros and cons of every part, chahe wo mud ho chahe wo mat ho, but yes, it helped you to move ahead with the time basically.
Yes. So, वही है, एक चाकू है उससे फल काट लो या फिर अपना हाथ काट लो,
डबल एज स्वॉर्ड। तो कैन यू ऑल्सो शेयर एनी बिहाइंड द सीन स्टोरीज फ्रॉम कोचिंग द टीम्स? ये तो आपने बताया कि व्हाट वाज योर ट्रांजिशन एज अ प्लेयर गांव से शहर से इंटरनेशनल टीम नेशनल टीम के लिए खेलने से लेकर, बट जब हम कोच करते हैं, जब हम कोचिंग देते हैं यंग टीम्स को, सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस देयर? या जो यंग प्लेयर्स होते हैं उनका क्या माइंडसेट होता है? व्हाट ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेस डू दे फेस एंड हाउ डू यू डील विद देम?
आजकल के बच्चे, मैंने बेसिक लेवल में भी कोचिंग दी है, उसके बाद से फिर मैं एक इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर हूँ, सबको कोचिंग दी है। आजकल के बच्चों का सिर्फ ये सपना होता है कि प्रो कबड्डी खेलना, क्योंकि प्रो कबड्डी आ गया, ग्लैमर है, पैसा है। इंडिया खेलने से ज्यादा आजकल के बच्चों का मोटिवेशन है कि प्रो कबड्डी खेलना है, दैट इज नॉट गुड, क्योंकि एक देश के लिए खेलना और एक किसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलना दोनों में डिफरेंस तो है, बट आजकल के बच्चे यही ज्यादा मोटिवेट होते हैं, उनका मेन फोकस आता है और बोलते हैं सर मैं कितने समय में प्रो कबड्डी खेल लूंगा, सिर्फ यही क्वेश्चन आके पूछते हैं।
Is it that we are into a hurry to reach a goal and we have lost the focus कि हम process पे focus करें, जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, और अभी हमें बस ये है कि ये target है and we have to achieve this target, is it?
Yes, this is the target for all the youngster who is coming to the kabaddi, और ये बहुत ही खराब है, क्योंकि इसके बाद अगर मान लो कि चलो तुमने pro kabaddi का सोचा, it is not that much easy, बिकॉज उसके लिए भी आपको अगर किसी स्टेट को भी रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपको 5-6 साल तो वर्कआउट करना पड़ेगा। स्टेट के बाद अगर नेशनल रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए 6-7 साल करना पड़ेगा। इंडिया रिप्रेजेंट करना है तो कम से कम 10 साल तो खेलना ही पड़ेगा। तो इतना आपको 7-8 साल तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद देने के बाद भी अगर आप अपने बेसिक पे फोकस नहीं करते हो, आपके इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करते हो, तो आपको मोटिवेशन लेवल है ना वो एक बार की परफॉर्मेंस से नीचे चला जाएगा और एक बार की परफॉर्मेंस से ऊपर भी चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो वो फेस कर रहे हैं।
एब्सोल्युटली,
आप देखोगे प्रो कबड्डी में भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो एक सीजन बहुत अच्छा खेलते हैं, मतलब नेक्स्ट सीजन उनका नामो निशान नहीं होता है, लेकिन पुराने प्लेयर आप देख लो, पुराने प्लेयर कुछ नहीं तो 7-7 सीजन बहुत अच्छा खेले हैं। पवन शरावत को देखो, वो तीसरे सीजन में आया था और आज 11वां सीजन है, उस सब में भी सबसे अच्छा बेस्ट प्लेयर है।
जो आप कहना चाह रहे हैं इट इज ऑल अबाउट कि लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड फोकस नॉट ऑन टू द गोल बट ऑन टू द प्रोसेस इज मच मच इम्पॉर्टेंट. और ये जो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं एट टाइम्स कि ये तो चाहिए ही चाहिए और ये जल्दी से जल्दी चाहिए, दैट इज द कल्प्रिट
डेफिनेटली.
What do you advise the young athletes who are there, who are facing self-doubt? हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम क्या ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है बहुत, फिर पीयर ग्रुप का बहुत प्रेशर होता है, तो जो सेल्फ डाउट में होते हैं आप उनसे हाउ डू यू लाइक टू एड्रेस द यूथ?
सिर्फ उनको मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ जो हमारी पूरी प्रॉडकास्ट में यही बात हुई कि आप गोल पे फोकस मत करो, प्रोसेस पे फोकस करो. एक्चुअली मैं सिर्फ इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि चलो मान लो आपने एक गोल कर लिया कि आपको इंडिया खेलना है, इंडिया खेलने के बाद ही तो जिंदगी खत्म नहीं होती, उसके बाद भी जिंदगी है ना, उसके बाद क्या, वो खत्म हो गया तो क्या एंड ऑफ द स्टोरी हो गई, फिल्म खत्म हो गई, दी एंड कर दे? नहीं, आपको जीना है ना, तो जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है. बिना कुछ किए उस समय के बाद आप इंडिया खेल लोगे, उस समय के बाद का जो फेस है ना वो आपका बहुत खराब गुजरेगा. इसीलिए कभी भी कोई भी इंसान इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता है, लेकिन गोल इनफाइनाइट हो सकता है. और गोल इनफाइनाइट करके आप उस प्रोसेस पे बिलीव करके और चलते रहो आगे लाइफ टाइम, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें करना है, बिना कुछ किए तो हम रह नहीं सकते इस दुनिया में. तो उसी गोल को आगे बढ़ाते रहो और देखते जाओ कि कहां तक पहुंच सकते हो. बस यही बोलना चाहूंगा मैं.
well said, sir.
Decide your goal.
So, अगर मैं आपको बोलूं that if you could go back and give your own younger self one piece of advice, तो आप क्या देंगे? अगर जैसे आलोक जी अगर जाते हैं 10 साल वाले आलोक से मिलने, तो उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप?
सिर्फ मैं उसको यही एडवाइस देना चाहूंगा, मैं बोलूंगा वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया और आई होप आगे भी तुम कुछ अच्छा ही करो.
Very well, sir. So you are much of an optimistic person, I've seen. So let us quickly have this rapid fire round with you. So one word to describe your kabaddi journey.
Struggle, journey, fight.
First opponent you have faced.
Services. Why I am telling services? Because एक तो वो job होती है उनके पास, और services मतलब army, air force और navy, ये तीनों की team मिला के एक team बनती है. तो एक तो जॉब होती है उनके पास और अच्छे अच्छे प्लेयर वो रिक्रूट करते हैं, उसके बाद एक टीम बनाते हैं, उसके बाद खेलते हैं. तो सर्विसेज खेलने का मतलब है कि इंडिया खेले हमेशा, दे विल विन इंटरनेशनल लेवल.
टफ ओपोनेंट.
यस, दे आर माय टफ.
योर प्री मैच रिचुअल और सुपरस्टिशन की कोई भी मैच होता उससे पहले आपने ये कि ये तो मुझे करना ही करना है?
कुछ नहीं, ग्राउंड के पैर पड़े और बोला कि इंजरी ना हो, जो मुझे हो गई थी, बट वही कि इंजरी ना हो और किसी को भी इंजरी ना हो, बिकॉज खिलाड़ियों को सिर्फ इंजरी और घर की परिस्थिति बर्बाद करती है, नहीं तो जो सोचता है, जिसका डेडिकेशन लेवल होता है, वो बहुत आगे जाता है. इंजरी ना हो और उसकी घर की परिस्थिति अच्छी हो.
What is that one life lesson you have learned from kabaddi that applies beyond the sport?
Never give up.
Very well said.
मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको जो मैंने कभी नहीं बताया. जब मैंने ये सब खेला, खेलने के बाद मुझे एक इंजरी हो गई जिसमें मेरी टीवी और फिबुला दोनों बोन डैमेज हो गई और डैमेज होके बाहर हो गई. डॉक्टर ने बोला कि तुम चल भी नहीं सकते, यू आर नॉट एबल टू वॉक इवन. तो मुझे 1.5 साल लगा रिकवर करने में. और जो लोग मुझे बोलते थे कि यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी टैलेंटेड, उनके सामने जब मैं ग्राउंड पे वॉक करता था, बिकॉज आई एम वॉकिंग थ्रू व्हील चेयर टू द ग्राउंड, वो लोग ही बोलते थे कि इसको चलना नहीं आता और चल नहीं पाता है और ये ग्राउंड पे जगह घेर रहा है ऐसे कर. उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी और फिर से खड़ा हुआ, फिर से खेला और आज मैं एक आपकी जो IIT चैंपियनशिप होता है उसका एक बेस्ट एथलीट, अभी रिसेंटली इस साल में बेस्ट एथलीट.
तो कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट. एंड आई रियली अप्रिशिएट कि हमारा जो भी कॉन्वर्जेशन अभी हुआ है इस पॉडकास्ट में, इट हेल्प्स द यूथ एंड नॉट ओनली द यूथ बट द पीपल अराउंड जो इंजरी के कारण या जो सेटबैक्स के कारण हताश हो जाते हैं. तो आई रियली बिलीव दैट इफ दे कैन लर्न एंड दे कैन self motivate themselves, you know, this is not only the end, even if they face those hardships around and there is a much much longer way to go ahead with. So thank you so much, sir, for joining us into this podcast. And that's a wrap on today's episode of Lost and Found. Huge thanks to Dr. Alok Singh for sharing not just his career but his personal journey of resilience and growth. Here's your message of the day. Sometimes the greatest victories are the quiet decisions to keep going. If you enjoyed this episode, follow the show, leave a review, and share it with someone who might need a little inspiration. Got questions or feedback? Send them in. I would love to hear from you. Until next time, stay curious, stay kind, and remember, getting lost is often how we find our way. Thank you.